साथियों नमस्कार, आप सुन रहे मोबाइल वाणी। मोबाइल वाणी से मैं दिनकर पातुकर। आज मोबाइल वाणी के मंच पर हमारे साथ गांधीवादी लोहियावादी समाजवादी चिंतक एवं वरिष्ठ पत्रकार रघु ठाकुर जी मोबाइल वाणी पर रूबरू होने जा रहे। नमस्कार भाई साहब
जी। नमस्कार पत्रकार जी। नमस्कार
भाई साहब। जैसा कि कल देश में नए संसद भवन का लोकार्पण हुआ है, तो हम आपसे जानना चाहते हैं क्या देश को नए संसद भवन की आवश्यकता थी या नहीं?
राय में पत्रकार जी अभी नए संसद भवन की आवश्यकता नहीं थी और ये एक प्रकार का सरकार ने अपव्यय किया है। जो पुराना संसद भवन था वो अच्छा था, अगर थोड़े बहुत मरम्मत की आवश्यकता हो सकती थी। इसके लिए 950 करोड़ रुपया इसके ऊपर बर्बाद करना ये सरकार की एक फिजूल खर्ची है, और वैसे अकेले फिजूल खर्ची भी नहीं है, इसके पीछे कई प्रकार के आर्थिक षड्यंत्र या आर्थिक घपले को कारण भी है। दरअसल एक पूरा प्रोजेक्ट बनाया गया है जिसका नाम है विस्टा प्रोजेक्ट। इसके ऊपर 25,000 करोड़ रुपया खर्च होना है। ये जो विस्टा प्रोजेक्ट बना है, इसमें जितने भी वहां के महत्वपूर्ण स्थान थे, संसद थी, नॉर्थ ब्लॉक है, साउथ ब्लॉक है और दूसरे दफ्तर हैं, इन सबको हटाया जा रहा है। इनको हटा के एक अलग एक एरिया में बनाया जा रहा है और जो बकाया जगह बचेगी उस बकाया जगह के लिए कारपोरेट के लिए दफ्तरों को दिया जाएगा। तो एक प्रकार से दिल्ली राजधानी में कारपोरेट को बसाने का सिलसिला है ये, उसके लिए ये नया भवन बनाया गया है। वरना आप बताइए कि हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है 545 है जो कितने हैं, जो हमारे यहाँ राज्यसभा के मेंबर हैं 250 वो जो कितने हैं, जो हाल है वो हाल में कभी एक बूंद पानी नहीं गया, सब सुरक्षित है। तो एक नए भवन को बनाने की आवश्यकता क्या थी, इसका औचित्य क्या था? तो इसका कोई औचित्य नहीं था। इसका सिर्फ इतना उद्देश्य है कि किसी प्रकार से ये जगह खाली हो जाए और वहां पर कारपोरेट के लिए पैसा दिया जाए, ये इसकी योजना है। दूसरी बात यह है कि आपने नया भवन बनाया तो इस नया भवन बनाने के संख्या की बढ़ाने का उद्देश्य क्या है? अभी एक बड़ी चर्चा वातावरण में चल रही है जो कि मैं अभी उसकी पुष्टि नहीं कर सकता हूं क्योंकि मेरे पास कोई पुष्ट प्रमाण नहीं है, परंतु कई वरिष्ठ लोगों ने, कई पत्रकारों ने मुझसे बताया है कि ये जो संख्या अभी पार्लियामेंट की रखी है इन्होंने बनाई है 1100 की क्षमता, यानी 300 मेंबर बढ़ना है। जब 300 मेंबर बढ़ना है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि जो हमारे यहाँ के लोकसभा के सांसद 545 हैं, इनकी संख्या बढ़ा के 100-200 बढ़ा के 750-800 की जाए। और अगर ये किया जाएगा तो उसके लिए एक प्रकार से सारे क्षेत्रों का पुनर्नवीनीकरण करना पड़ेगा। जब क्षेत्रों का नवीनीकरण होगा तो इसके लिए एक कमीशन बनेगा और वो कमीशन में 2-3 साल का समय लगेगा। तो एक ये भी लोग संदेह व्यक्त कर रहे हैं कि सरकार चुनाव को टालने के लिए इस क्षेत्रों के पुनर् संयोजन के लिए ये बहाना खोज रही है, इसके लिए तैयार किया गया है जी।
भाई साहब, जैसा कि कल नवनिर्मित संसद भवन के लोकार्पण कार्यक्रम संपन्न हुआ जिसमें कई विपक्षी दलों ने इसका वॉकआउट किया, इस पर आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे?
अब देखिए, मैं उस पर इससे कुछ नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि मैं उनके पक्ष में भी नहीं कहना चाहता और विपक्ष में भी नहीं कहना चाहता। मेरा कहना है कि अब विपक्ष को कुछ बुनियादी सवाल उठाने चाहिए, इन ऊपरी सवालों पर ज्यादा जाने से कोई मतलब नहीं है। अब जैसे एक चर्चा चली कि साहब के राष्ट्रपति को उद्घाटन करना चाहिए था, अब राष्ट्रपति के लिए आप कह रहे हैं कि साहब राष्ट्रपति आदिवासी है उनको उद्घाटन करना था, तो फिर आदिवासी राष्ट्रपति का आपने विरोध काहे के लिए किया था? आप कहेंगे साहब पुराने राष्ट्रपति को करना चाहिए था, तो वो SC थे तब आपने विरोध क्यों किया था? तो ये क्या है कि विपक्ष को चाहिए कि वो बड़े सवालों को लेकर लड़े। बड़ा सवाल ये है कि भाई इस संसद की उपयोगिता क्या है, औचित्य क्या है, क्यों बनाया जाए? क्या गांधी के देश में, गांधी के विचारधारा के देश में ऐसी संसद की या ऐसे भवन की आवश्यकता है? ये मुख्य सवाल है, इस पर विचार करना चाहिए। और दूसरी बात कि संसद एक लोकतंत्र की संस्था है, लोकतंत्र का पर्याय है। आप यहाँ पर संसद का नए भवन का उद्घाटन करके लोकतंत्र की शपथ ले रहे हैं और दूसरी तरफ वही पास में जंतर मंतर पे पिछले 1-1.5 महीने से हिंदुस्तान के वो पहलवान लोग जिनने देश के लिए गौरवान्वित किया है, स्वर्ण पदक जीत के आए हैं, दुनिया में नाम कमाया है, देश के लिए नाम कमाया है, उन पहलवानों को आप मार मार के हटा रहे हैं, तो ये कैसा लोकतंत्र है? अरे अच्छा तो ये होता कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी खुद वहां जाते, बोलते कि भाई आपकी समस्या है, मैं आपके कार्रवाई कराता हूँ, चलिए करिए कार्रवाई कर। परंतु ये लोकतंत्र नहीं होता है। लोकतंत्र एक ईंट गारे का, पत्थर का, मार्बल का, चांदी और सोने का मकान नहीं होता है। लोकतंत्र एक विचारधारा है, एक मन स्थिति है, एक जीवन जीने की शैली है, एक कर्तव्य है, इसको समझना होगा। परंतु हिंदुस्तान की जो सरकार है वो सरकार लोकतंत्र को ईंट मिट्टी के गारे में समझती है, वो अपने मानवीय अपने कर्तव्य नहीं समझती है।
भाई साहब, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे इस अवसर पर, कल जो संसद भवन का लोकार्पण हुआ उसमें सेंगोल को स्थापित किया गया है, ये सेंगोल से क्या तात्पर्य है?
देखिए, अब सेंगोल के बारे में कई प्रकार की चर्चाएं चल पड़ी हैं, और वो स्थापित नहीं था तभी पार्लियामेंट थी, वो स्थापित हुआ तभी पार्लियामेंट है। मैंने आपसे पहले ही कहा कि ना कि मैं इन छोटे मोटे सवालों को लेकर के एक निरर्थक विवाद नहीं खड़े करके मैं अपनी बहस नहीं पड़ता, क्योंकि अब आप सेंगोल की चर्चा करिए, फिर आप कहिए यहाँ साधु संत आए थे, तो कल सारे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी जाके कहेगी देखिए साहब ये साधुओं का विरोध कर रहे हैं, तो उनको जो उनका जो एजेंडा है उस एजेंडा को बल मिलता है। तो अगर कोई वास्तव में भाजपा की विचारधारा का विरोधी है तो उसे विरोध भी ऐसे तरीके से करना चाहिए और सवालों पर करना चाहिए जिस पर वो निरंतर हो, ऐसा ना हो कि अरे आप इसका विरोध कर रहे हैं उसी को बल मिल जाए, ऐसा विरोध किस काम का?
जी जैसा कि आपने अभी अपने शब्दों में भी कहा है कि जहां एक ओर संसद का लोकार्पण हो रहा था वही जंतर मंतर पर पहलवानों के साथ सरकार का व्यवहार बराबर नहीं रहा, तो हम आपसे जानना चाहेंगे इस अवसर पर कि आखिर लोकतंत्र में इन पहलवानों की जो ये दशा हो रही है, ऐसे कई आंदोलन जंतर मंतर पर होते जहां पर सरकार का ध्यान नहीं होता, तो इस संबंध में वर्तमान सरकार से आप क्या आशा रखोगे?
देखिए, ये जो आंदोलन है ये आंदोलन एक नए प्रकार का आंदोलन था, इस अर्थ में कि ये आंदोलन मतलब कोई वैसी मांग नहीं है, बल्कि आंदोलन तो कानून को क्रियान्वित करने की मांग है। देखिए, कई बार हम लोग आंदोलन करते हैं तो इसमें हम लोग नए कानून की मांग करते हैं, हम कहते हैं कि भाई चिकित्सा का मूल अधिकार बनना चाहिए, तो हम एक नए कानून की मांग कर रहे हैं ना
जी।
ये जो आंदोलन है ये आंदोलन इस बात को लेकर है कि पास्को कानून जो कहता है कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ में अगर कोई रिपोर्ट होती है पास्को के कानून के अंतर्गत में FIR दर्ज होती है तो उसे गिरफ्तार किया जाएगा। वो कानून ये भी कहता है कि उसे कहे में सफाई जो देना है, डिफेंस जो देना है, वो जिसके ऊपर आरोप है उसको देना, आरोपी को उसको बताना कि नहीं मैं निर्दोष हूं, ये कानून है। अभी तक पास्को में जो लोग हैं गिरफ्तार जिनके खिलाफ रिपोर्ट होती है उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाता है, पहले इन्हें FIR नहीं लिखी, फिर सुप्रीम कोर्ट के हस्ते के बाद FIR दर्ज हो गई, जब FIR दर्ज हुई तो उसको गिरफ्तार करना चाहिए। और किस प्रकार का झूठ चल रहा है कि जो उसके संस्था के अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं कि साहब अगर ये लोग दो हैं विनेश फोगाट और एक और वो पहलवान है ये अगर अपनी नाकों के लिए तैयार हो तो हम भी तैयार हैं, उन दोनों ने लिख के दे दिया कि हम तैयार हैं बड़ा नाको कराइए। अब क्यों नहीं करा रहे भाई नारको, आप क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे? तो ये विशुद्ध रूप से सत्ता की तानाशाही है जो हर आंदोलन करने वाले, हर विरोध करने वाले, हर व्यक्ति को जो अपने अधिकार की मांग कर रहा है उसके लिए निराश करना चाहते हैं। तो ये जो निराश करने का जो भाव है या जो एक बार की कहना चाहिए कि जो वैचारिक हिंसा है, ये हिंसा भी अपने आप में अलोकतांत्रिक और ये तानाशाही का द्योतक है।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका कि आपने एक महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपनी राय मोबाइल वाणी के माध्यम से साझा की, इसके लिए
आपको बहुत बहुत धन्यवाद दिनकर जी। और मैं इसलिए और धन्यवाद देता हूँ कि मैंने इसे आपसे पहले ही कहा कि मैं विरोध के भाव में भी नहीं बहता हूँ, मैं समाधान के भाव में भी नहीं बहता हूँ। मैं देखता हूँ कि भाई हम जो विरोध कर रहे हैं इस विरोध का समाज के ऊपर असर क्या पड़ने वाला है। दुर्भाग्य इस बात का है, दुख इस बात का होता है कि हमारे यहाँ जो तथाकथित सदी बड़ी पार्टियां विरोध की हैं, प्रतिपक्षी हैं, वो पार्टियां कृत्रिम चीजों का विरोध करते हैं और कृत्रिम सवाल खड़े करते हैं, मूल सवाल को भुलाते हैं, मूल सवाल दूसरे हैं। तो उनसे हम अपील करना चाहते हैं कि विरोध का मतलब है कि बुनियाद पर चोट करो, ग्रोथ का मतलब है कलम काट के पेड़ को बढ़ाना नहीं है, ग्रोथ का मतलब है कि जड़ को सुखाओ।
जी
धन्यवाद आपके लिए।
आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मोबाइल वाणी पुनः एक बार आपका धन्यवाद करता है।
धन्यवाद तौर पर।